तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान अलग अलग उदाहरण दे रहे कैसे इस जगत में जो विशेष चीज है या सभी चीज़ों में जो विशेषता है वो सब कुछ भगवान को प्रतिनिधित्व करता है, वो कैसे भगवान से आता है वो सब भगवान वर्णन करते हैं। और अंत में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस भौतिक जगत में सब कुछ सभी विविधताएं और सब कुछ तीन गुणों से व्यक्त है, वो तीन गुणों का ही प्रकटीकरण है वो। तो इसलिए भगवान बहुत सारे उदाहरण देकर अंत में कहते हैं कि ये सभी तीन गुण क्या है, मुझे प्रतिनिधित्व करता है। ये चैव सात्विका भाव राजसस्तामस शये मत एवैदितान विद्धि न त्वं तेषु ते महि। तुम जान लो कि मेरे शक्ति द्वारा मेरे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्गुण हो, रजगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं तीन प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो यहाँ पर भगवान तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे अंत में ये गुणों के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि पूरा भौतिक प्रकृति ये तीनों गुणों से प्रकट हुआ। हम पहले उदाहरण दे रहे थे ना, जैसे कपड़ा क्या है, ये जो धागे से उसको बनाया जाता है, बनाई जाती है या बनाया जाता है, सही हाउ टू टॉलरेट माई ग्रामर। सो वैसे ये भौतिक प्रकृति ओतम प्रोतम हॉरिजेंटली और वर्टिकली सभी गुणों के द्वारा ही सृष्टि किया गया। ये तीन गुण, ये तीन गुण पूरा भौतिक जगत में क्या है, सर्व सब सब जगह फैले हुए हैं। तो तीन गुण लेकिन इन तीनों गुणों में से भी भगवान एक चीज हम लोग जानते हैं ना, इन तीनों गुणों से भी भगवान क्या है, सत्वगुण को प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि तीन गुण सभी उनसे ही आते हैं लेकिन विशेष करके वो सत्वगुण को प्रतिनिधित्व कर, इसलिए वो सत्वगुण का अवतार भी माना जाते हैं ना भगवान। तो विष्णु गुण तीन गुणावतारों में कौन है, तो ब्रह्मा रजोगुण के अवतार है और शिवजी तमोगुण के, और भगवान सतोगुण को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हालांकि वो सतोगुण को प्रतिनिधित्व करते हैं फिर भी उससे उनको कुछ लेना देना, वो पूरी तरह से विशुद्ध सत्व है भगवान, पूरी तरह से शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर है। तो कभी भी वो भौतिक स्तर पर नहीं आते या भौतिक गुण उनसे छूते नहीं हैं। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं मत ये वे तितान विद्धि न त्वं तेषु ते महि। सो तो अहम तेषु ते मही, तो मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। लेकिन ना शब्द पहले आता है ना, ना मैं उनमें नहीं हूं, इसका अर्थ होता है ना त्वम तेषु ते मही, मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वो मुझ में है, ऐसे बोल रहे। तो यहां पर भगवान क्या है, ये गुणों के संबंध में वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व को वर्णन कर रहे, गुणों के संबंध में। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि सब कुछ अचिंत्य भेदाभेद तत्व से ही जानना चाहिए। अभी भगवान कृष्ण के गुण के साथ या गुणों, तीन गुणों का भगवान कृष्ण के क्या साथ क्या संबंध है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे। तो मैं उनमें नहीं हूँ लेकिन वो मुझ में है, तो एक ही साथ में वो भिन्न भी है और एक वो उनके उनसे एक भी है। तो उनसे तीन गुण उनसे एक है, कैसे कि वो उनकी शक्ति के द्वारा आते हैं इसलिए उनके अंदर है, लेकिन भगवान उनमें नहीं है, उनको छूते वो तीन गुण उनको छूते नहीं है। तो एक ही साथ में भगवान भिन्न भी है तीन गुणों से और एक भी है, या तीन गुण उनसे एक भी है और भिन्न भी है। तो हमें ऐसे हमको उनको समझना चाहिए। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान सीधा संपर्क में नहीं रहते हैं प्रकृति, भौतिक प्रकृति के साथ, तो इसलिए उनका विस्तार होता है। तो ऐसे इसलिए भगवान को भी, क्योंकि वो अलग है तीन गुणों से, वो तीन गुणों में नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहा गया है। सो निर्गुण मतलब निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, उनके अंदर कोई गुण नहीं है। तो लेकिन इसका अर्थ है तीन गुण का प्रभाव नहीं है, ये भौतिक तीन गुण, भौतिक जगत के जो तीन गुण हैं उनका प्रभाव उनमें नहीं है। तो ऐसे वो स्वतंत्र है, वो अलग है इनसे, वो इन तीन गुणों में नहीं है, ऐसे हमें समझना चाहिए। और विषय भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भगवान के विशेष लक्षण है कि कैसे वो तीन गुणों से एक भी है और भिन्न भी है। तो ये विशेष यहाँ पर वो कैसे उनके अधीन है, तो राजा को राजा के उदाहरण दे रहे। तो राजा बहुत राज्य में नियम बनाते लेकिन, और दंडित भी करते, लेकिन वो स्वयं वो नियम में नियम के अधीन नहीं रहते। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, ये कठिन है ना या अभी समझना, क्योंकि आजकल का राज्य राज्यभार बहुत ही बदल गया है ना, तो पहले जैसे नहीं है अभी। तो हम लोग जितना वर्णाश्रम से दूर जाएंगे उतना ये सब चीज़ नहीं समझेंगे। दैट्स व्हाई भगवद्गीता इज मेंट फॉर दोज आर फॉलोइंग वर्णाश्रम। भगवद्गीता उनके लिए है जो वर्णाश्रम धर्म को पालन कर रहे, दूसरा लोग नहीं समझेंगे ये सब चीज, कैसे समझेंगे। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 13, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्ये विहस सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। सो त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् ये भी है सर्वमिदम जगत, सर्वमिदम जगत सारा संसार क्या है मुझे, तो तीन गुणों के प्रभाव मोहग्रस्त हो गया है। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है, जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। तो तीसरे श्लोक में, इस अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या बताया बताइए? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां व्यतीत तत्र। क्या अर्थ है उसका? माधवेंद्र प्रभु बोलेंगे। माधव सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, उनमें से कोई विरला मुझे जान सकते हैं। तो उस तात्पर्य में हम लोगों ने सोचा समझा कि कैसे भगवान को जानना बहुत कठिन है, हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या बताया क्यों कठिन है भगवान को जानना, कल चर्चा किया ना हम लोग, तात्पर्य में क्या बोले क्यों कठिन है भगवान को जानना? हाँ, तो आध्यात्मिक विशेषताओं को समझना बहुत ही मुश्किल है। और कुछ हम लोगों ने चर्चा किया? क्योंकि भक्ति करने से ही उनको समझ सकते हैं, लेकिन भक्ति विरला कोई करते हैं इस जगत में। तो ऐसे कई सारे चीजों को हम लोगों ने देखा। इस श्लोक में, 13वें श्लोक में भगवान एक कारण बता रहे हैं क्यों भगवान को समझना मुश्किल है। क्यों समझना मुश्किल है? क्योंकि सभी लोग इस जगत में 3 गुणों से मोहग्रस्त हो गए हैं, तो उसके कारण भगवान को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले श्रील प्रभुपाद इन 3 गुणों का जो प्रभाव है जीवों के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आई फॉरगॉट माई श्लोक का बुक ना। Someone will get my book. तो सारा संसार 3 गुणों के प्रभाव में पड़ गया है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग गुण अलग अलग लोगों के ऊपर प्रभावित करते हैं, और उसके कारण हर एक व्यक्ति अलग अलग स्वभाव और बर्ताव प्रकट करता है इस जगत में। तो सभी लोग इस जगत में, जो भी है, सभी लोग 3 गुणों के प्रभाव में है। तो हमारा जो आजकल बहुत सारा ऐसे क्या करते हैं लोग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं ना आजकल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए? पहले हमारा पर्सनालिटी क्या है, कौन से स्तर पर है हम लोग, वो जानना चाहिए पहले। हाँ, फिर बाद में कहाँ जाना चाहिए उसको जानना चाहिए। समझ में आ गया? किस स्थिति से कौन से स्थिति तक अपने आप को विकास करना चाहिए उसको हमें जानने के लिए पहले हमारा स्थिति क्या है वो समझना चाहिए। दूसरा है कहाँ जाना चाहिए हमें, वो समझना चाहिए। अंत में वास्तविक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? हम लोगों को समझना है कि कौन से गुणों के प्रभाव में हम लोग हैं, और कैसे हमें इन 3 गुणों के परे जाना चाहिए, तो वो हमें समझना है। ये वास्तविक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। व्यक्ति विकास क्या बोलते हैं उसका? व्यक्तित्व विकास। तो ये वास्तविक विकास है। तो सभी लोग एक ही स्तर पर नहीं है, सब लोग अलग अलग गुणों के प्रभाव में है इस जगत में, सभी लोग गुणों के प्रभाव में है। तो वास्तव में सब कुछ ये 3 गुणों के प्रभाव में है। जब ये 3 गुण मनुष्यों के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो तो मनुष्यों में अलग अलग प्रकार के जो स्वभाव प्रकट हो जाते हैं, जिसको साइकोफिजिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर बोलते हैं। स्वभाव हम लोग संस्कृत भाषा में जो कहते हैं ना, उसको स्वभाव कहते हैं। तो जब वो तो मनुष्यों के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो जीव अलग अलग स्वभाव प्रकट करते हैं। तो उन स्वभावों को भगवान 18वें अध्याय में वर्णन करते हैं। किसी को पता है कहाँ पर वर्णन करते हैं? साइकोफिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक, दैट इज राम, मानसिक तथा शारीरिक स्वभाव, ऐसे भी बोल सकते हैं सीधा, नेसेसरली कॉम्प्लिकेट करने से। साइकोफिजिकल, मानसिक तथा शारीरिक, कहाँ पर 18वें अध्याय में कहाँ पर बताते हैं, बताइए, कौन बताएंगे? मनुष्यों के ऊपर या मनुष्य समाज के ऊपर तीन गुण का प्रभाव, ये विषय कहाँ पर चर्चा हुआ है 18वें अध्याय में? हाँ, तो वो 42वां श्लोक से लेकर भगवान उसको वर्णन करते हैं। समोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांतता, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, शौच, सहनशीलता और प्रामाणिकता, क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी, प्रामाणिकता, ज्ञान और विज्ञान और धार्मिकता, ये ब्राह्मण का स्वभाव है, ऐसे बोल। तो क्यों ब्राह्मण का ऐसे स्वभाव आता है? क्योंकि उनके ऊपर सतोगुण का प्रभाव रहता है। तो ये ब्राह्मण के स्वभाव है। शौर्यं तेजो दतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यापरायणं दानं ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं। तो शौर्य, तेज, धृति, हिंदी में भी वैसे ही है यार, बोले संकल्प, पढ़ो जोर से पढ़ो, अनुवाद अनुवाद पढ़ो, जोर से जोर से, आवाज जोर होना चाहिए और धीरे से। और तौर से जोर से बोलना चाहिए। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वर्ज वैश्य कर्म स्वभावजम मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। क्योंकि यहाँ पर कर्म भी बताया गया और उनका स्वभाव भी बताया, या कर्म जो स्वभाव से जो कर्म जागृत होते हैं उनको भी बताया, उनको भी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी 16वें 7वें अध्याय के 23वां श्लोक है ना, क्या है 13वां श्लोक, तो उसमें क्या बोलते हैं, वो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक अथवा शारीरिक कार्य, मानसिक और शारीरिक कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो इसलिए उनके जो गुण होते हैं उनको भी स्वभाव होते हैं उनको वो भी, और उनके कर्म दोनों, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ये वैश्यों का कर्म होता है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो परिचर्य, तो ऊंचे वर्गों को सेवा करना शूद्र का स्वभाव होता है। तो ये गुणों के प्रभाव के कारण अलग अलग ऐसे स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं और कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कार्य के कारण क्या हो जाते हैं, सभी जीव, या ये स्वभाव के कारण या ये गुणों के प्रभाव के कारण सभी जीव अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके ऐसे समझना शुरू करेंगे, तो उसको ही मोह कहते हैं, मोहग्रस्त है ना। क्या हम लोग वर्णाश्रम को स्थापित करके ऐसे मोह में डालना चाहते हैं लोगों को? नहीं, हालांकि वो मोहग्रस्त है, तो हम लोग वर्णाश्रम को स्थापित नहीं करेंगे तो भी वो लोग ऐसे ही अपने आप को समझेंगे, क्योंकि गुणों का तो प्रभाव है उनके ऊपर। लेकिन वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है, धर्म होता है, इसके कारण भगवान विष्णु केंद्र रहते हैं और उनका सेवा भावना होता है, तो सेवा भावना आ जाता है क्योंकि भगवान विष्णु केंद्र में रहते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे मोह से वो ग्रस्त मुक्त हो जाता है। तो एक व्यक्ति गुणों के प्रभाव के कारण अपने आप को तो मोहग्रस्त हो जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसको आधुनिक तरीके से बता रहे हैं, तो वो मोहग्रस्त होना क्या है, देहात्म बुद्धि में जाना, क्योंकि अंत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी क्या है, तो वो भी देहात्म बुद्धि है, वो भी नश्वर है, देह के संबंध में है वो सब चीज़। तो और देहात्म बुद्धि के कारण ही एक व्यक्ति अपने आप को अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। इसलिए जब मनुष्य भारत में जन्म लेता है तो पाकिस्तान के लिए प्रति रड़ता है, जब वही जब उसको स्मरण का पाकिस्तान को स्मरण करते हुए मर जाता है तो पाकिस्तान में जन्म लेके भारत की ओर प्रति लड़ना शुरू कर देता है। या हिंदू या मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान की ओर लड़ते रहते हैं, तो लड़ते 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 हिंदू मुसलमानों के बारे में सोच के मुसलमान परिवार में जन्म लेके हिंदुओं के साथ लड़ना शुरू कर देता है। ये मोह है ग्रस्त, ये सब जीव क्या है, मोहग्रस्त। तो ये मोहग्रस्त होने के कारण जीव भगवान को समझ नहीं पाते हैं कि वो इन गुणों के परे है, अव्यय है, तो सनातन है। तो इसका अर्थ क्या होता है, वो लोग क्योंकि हम लोग गुणों के प्रभाव में है, इसलिए भगवान को भी हम लोग सोचते हैं कि गुणों के प्रभाव में है। इसलिए ना लोग भगवान जब रासलीला करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, वो भी क्या है, तो एक भौतिक जगत के पुरुष स्त्री के बीच में जो आकर्षण होता है वैसे आकर्षण है। वो आकर्षण क्या है, वो रजोगुण का लक्षण है ना। वो लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण में भी ऐसे रजोगुण था, वो भी बहुत कामुक थे। कोई कोई ईसाई धर्म वाले, जैन, ये सब लोग क्या सोचते हैं, भगवान अभी नरक में है क्योंकि उन्होंने ऐसे अधार्मिक कर्म किया, ऐसे वो लोग कहते हैं। क्योंकि वो लोग ऐसे गुणों के प्रभाव में हैं तो इसलिए वो भगवान को भी ऐसे सोचते हैं कि गुण के प्रभाव में। इसको क्या कहते हैं, आत्मवत मन्यते जगत, जानते हैं ये आत्मवत मन्यते जगत। हम जिस चेतना में रहते हैं हम लोग सोचते हैं उसको दूसरों के ऊपर भी लागू करते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही है। एक बार एक बहरा व्यक्ति था, बहरा आप जानते हैं ना, बहरा मतलब कान सुन नहीं सकता है, तो अपने पत्नी को बुलाया, अजी सुनती हो, ऐसे नॉर्थ इंडिया में होता है ना, तो पानी लेकर आओ, ऐसे बोला उन्होंने। वो बहुत व्यस्त थी कुछ कार्य में, हाँ हाँ लेके आ रही हूँ, ऐसे बताया उन्होंने। तो फिर अभी 1-2 मिनट के बाद फिर से उन्होंने क्या किया, क्या हुआ पानी नहीं लाए, ऐसे सुना उन्होंने, तो आ रही हूँ कहते और ऐसे 1-2 मिनट और भी, क्योंकि वो बहुत व्यस्त थे, वो विशेष करके स्टोव के ऊपर रहते हैं तो बहुत थोड़ा अभी कुछ जल जाएगा करके वो लोग, तो वो ख़त्म करना चाहते थे वो तो लेकिन ये व्यक्ति ने क्या कहा, क्योंकि वो बहरा था, उसने क्या कहा, ये मूर्ख स्त्री सुनती ही नहीं है, ऐसे होता। वो सुन रही थी और रेस्पॉन्स भी कर रहे थे, फिर से वो उत्तर भी दे रहे थे, वो जब भी वो पुकारा वो उत्तर भी दिया उन्होंने, लेकिन ये उसको सुना नहीं है व्यक्ति, और वो कहता है कि ये सुनती ही नहीं है, ये बहरी है तो ये आत्मवत मन्यते जगत। तो बौद्ध जगत में सब ऐसे होते हैं कि लोग अपने चेतना के अनुसार सबको समझते हैं, देखते हैं। तो क्योंकि ये लोग तीनों गुणों के अंदर है, और भगवान को भी ऐसे तीन गुण। या दूसरा चीज, यहाँ पर अव्यय शब्द उपयोग किया गया। सो मामेभ्य परम अव्ययम्, भगवान तीनों गुणों के परे है, परम अव्ययम्। तो या उसको वहां जाने से पहले, या तो अव्यय मतलब वह क्या होता है, तो उनका वो सनातन है, उनका क्षिति नहीं होता है। तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसके बारे में वो बुक है ना, कुंती महारानी की शिक्षाएं या उपदेश, तो उसमें बोधन, तो उसमें कहते हैं क्योंकि हम लोग लंबे समय से ऐसे अस्थाई जगत में हैं, तो इसके कारण हम शाश्वतता के बारे में समझ नहीं पाते। तो क्योंकि हम लोग जन्म ले रहे, मर रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता कि भगवान सनातन है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि भगवान भी मर गए, कोई उनको तीर मार दिया और भगवान भी मर गए, ऐसे कहते हैं। या ऐसा एक पाश्चात्य देश में एक दार्शनिक था, क्या है वो, निक निर्जय, निर्जय निर्जय, वो दार्शनिक है, वो फिलोसोफर है, वो इतना मूर्ख लोग फिलोसोफर बन जाता है। वो क्या प्रचार किया, भगवान मर गया करके प्रचार किया। वो थे, सृष्टि किया उन्होंने, अभी मर गए, ऐसा ऐसे मूर्ख लोग दार्शनिक बन रहा है। आप देखो पाश्चात्य देश का कैसा स्थिति होगा, है ना, कितना बुद्धिमान होंगे पाश्चात्य देश में, आप सब कल्पना कीजिए। लेकिन हमारे भारत के मूर्ख लोग इतना मूर्ख बन गया, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मानते हैं। तो ये मूर्खता है। तो लोगों को पता नहीं है कि भगवान सनातन होते हैं। भगवान कभी, भगवान तो सनातन क्या, जीव भी सनातन होता है ना, हम लोगों ने चर्चा किया उसको। सो लेकिन क्योंकि ये लोग मरता है, उसने लिख दिया गॉड इज डेड, चर्च के ऊपर लिख दिया उसने, चर्च के दीवार के ऊपर गॉड इज डेड निर्जय करके। बाद में उसको कोई बदल दिया, उसको निर्जय इज डेड गॉड ऐसे लिख दिया। लोग ऐसे लिखते हैं ना, लोग यू नो दीवार के ऊपर ऐसे कुछ कुछ लिखना चाहते हैं ना, तो ऐसे उसने भी लिख दिया। तो ऐसे मूर्ख लोग क्या है, बड़ा बड़ा दार्शनिक बन जाता है। तो पाश्चात्य देश 2000 सालों में, साल साल का जो इतिहास आप पाश्चात्य देश के इतिहास पढ़ेंगे, तो ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में ही पढ़ेंगे आप, और कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी उनके बारे थोड़ा भी ज्ञान नहीं है उनको। और ऐसे शिक्षण प्रणाली, ऐसे दर्शन, ऐसे धारणाओं को अभी भारत अपना लिया अपने अपने शिक्षण प्रणाली में। वो थोड़ा बहुत जो ईसा मसीह ने थोड़ा बहुत जो सिखाया था, उसको भी वो लोग नष्ट कर दिया। पुनर्जन्म के बारे में भी सिखाया था उन्होंने, और आरंभिक जो ईसाई धर्म वाले क्या थे, वो वेजिटेरियन थे, वो लोग मांस नहीं खाते थे। तो ये लोगों ने उस सभी निकाल दिया, पुनर्जन्म नहीं है, और पशुओं में आत्मा नहीं रहता है, इसलिए उसको काट के आप खा सकते हो। ऐसे कुछ अलग अलग तरीका धारणाएं बना के वो लोग जो थोड़ा बहुत ज्ञान था उसको भी नाश कर दे। ये पाश्चात्य देश का इतिहास, दार्शनिक इतिहास। तो लोगों को पता नहीं है कि भगवान सनातन है। तो ये एक ऐसा श्लोक है जहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वो तीन गुणों के परे है। अगला श्लोक में भी हम लोगों को ऐसे जानकारी मिलता है। तो तीन गुणों के परे है वो भगवान। तो ये एक लक्षण होता है परम सत्य का, कि वो तीन गुणों के परे होना चाहिए। जो तीन गुणों के अंदर होता है वो परम सत्य नहीं हो सकता, वो अस्थाई सत्य हो जाएगा, रिलेटिव सापेक्षिक सत्य हो जाएगा। तो परम सत्य मतलब तीनों गुणों के परे होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण क्या है, तीन गुणों के परे है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि ब्राह्मण क्या है, वो सत्वगुण में रहता है, सत्वगुण से मोहग्रस्त रहता है। ब्राह्मण मतलब सत्वगुण से मोहग्रस्त रहता है, वो भी मोहग्रस्त है। तो सिर्फ जो भगवान के भक्त है, यहाँ पर अंत में बता रहे हैं ना, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो वास्तव में मुक्त है। तो कृष्ण भावनामृत में स्थित है मतलब निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में। सो निस्संदेह मतलब ट्रूली एस्टैब्लिश्ड, ये सीधा वो भी अनुवाद उतना सही अर्थ नहीं देता है। पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में स्थित है वास्तविक, या उनसे हम लोग कहते हैं यह निस्संदेह, निस्संदेह इट इज करेक्ट, वास्तविक है ना, वास्तविक कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है ट्रूली। सो वास्तविक विल बी गुड और निस्संदेह विल बी गुड, सो बोथ आर ओके। सो वास्तविक रूप से जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो व्यक्ति ही मुक्त हो सकता है। ब्राह्मण भी क्या है, सतोगुण से वो मोहग्रस्त है। बाद में हम लोग जो चर्चा करेंगे तो 14वें अध्याय में कैसे ये तीन गुण जीवात्मा को इस भौतिक जगत में बांधते हैं, तो जिसके कारण वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। सो ब्राह्मण भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा निराकार ब्रह्म को साक्षात्कार कर सकते हो, उस स्तर तक आ सकते, लेकिन भगवान को नहीं जान सकते वो भी, समझ में आ रहा है। इसलिए सभी जीव इस भौतिक जगत में मोहग्रस्त होने के कारण भगवान को नहीं जानते हैं। हाँ और कुछ बोलना है इसके, क्यों ये मोहितम ना भी जानाती, ना भी जानाती मतलब ये ना भी जानाती शब्द इस दृष्टिकोण से उपयोग किया गया है, इस दृष्टि से उपयोग किया गया है। वास्तव में जीव का शाश्वत संबंध रहता है भगवान के साथ। पहले उसको भगवान के साथ उसका जो संबंध का ज्ञान था वो जानकारी था, लेकिन अभी भूल गया है। ना भी जानाती मतलब वो भूल गया, भूला हुआ है, वो अर्थ है उसका। मोहग्रस्त होके भगवान को भूला हुआ है, इसलिए ना क्यों भूलता है वो, क्योंकि तीन गुणों के प्रभाव में आता है। ये तीन गुण क्या करते हैं, ऐसे चीज क्या करते हैं जिसके कारण जीवात्मा भगवान को भूल जाता है, उसके प्रेम को काम में बदल देता। और कुछ क्या है, भौतिक जगत में विशेषताएं क्या है वो बनाते हैं ये तीन गुण। इसका अर्थ है इस जगत में जो भी विविधताएं हैं, विशेषता है या आकर्षण जो है वो तीन गुणों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये तीन गुण ऐसे आकर्षणों को बनाकर जीवात्मा को आकर्षित करते हैं, इसके कारण जीवात्मा मोहग्रस्त हो जाता है। मोहग्रस्त होके वो भगवान को भूल जाता है, कभी ब्राह्मण के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है, कभी क्षत्रिय के कार्यों से या गुणों से मोहग्रस्त हो जाता है, कभी वैश्य, कभी शूद्र, है ना, आया कोई कोई अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से मोह, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ मैं, बहुत बड़ा माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ मैं, बहुत बड़ा क्या है तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ऐसे अलग अलग कार्यों से आकर्षित होकर जीवात्मा भगवान को भूल जाता है। तो ये कारण है कैसे मोहग्रस्त हो जाता है, तीन गुणों के कारण। तो अगला श्लोक, दैवेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाले इस मेरे दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान आगे बढ़ते हैं कि ये माया शक्ति के, उनके भौतिक प्रकृति के बारे में वर्णन। तो यहाँ पर माया के बारे में वर्णन कर रहे हैं, माया का परिभाषा दे रहे हैं भगवान, माया क्या है, क्या चीज है ये माया, तो उसके बारे में परिभाषा दे रहे हैं। तो पहले बोलते हैं दैवी एषा, ये माया शक्ति क्या है, तो अंतर या बहिरंग शक्ति जिसको कहते हैं हम लोग, तो ये दैवी शक्ति है बोलते। तो क्यों दैवी शक्ति है, तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि वो दैवी शक्ति इसलिए है क्योंकि उसका यहाँ पर अपरा प्रकृति, अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है। तो इससे पहले भगवान ने उसको वर्णन किया था सातवें अध्याय के कौन से श्लोक में, इसके बारे में चौथे श्लोक में इसके बारे में बताया था कि ये भिन्न प्रकृति है या अपरा प्रकृति है, ऐसे उन्होंने वर्णन किया था। ये अपरा प्रकृति क्या है, ये दैवी प्रकृति कहा गया है। क्यों, इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। सो इसका संबंध दैवी है, मतलब दैवी से संबंध है होना चाहिए ना, इट हैज कनेक्शन विद डिवाइन। तो दैव के साथ या दिव्य दैवी से इसका संबंध है, इसके कारण ये दैवी माया कहते हैं। How you will translate this divine, actually this doesn't make sense at all. So it's divine connection. Daivi sambandha, but it is, it should give some meaning. No, okay, you are doing literal translation, but it should give some meaning, right or not? Sometime we cannot take literal translation. So, इसका दैवी संबंध है, इस दूसरे शब्दों में जो भगवान दैवी है उनके साथ इनका संबंध है। क्या संबंध है भगवान के साथ इनका, इस भौतिक प्रकृति का, जिसके कारण इसको दैवी प्रकृति कहा गया है? तो पहला चीज आप देखिए, दो कारणों से इस अपरा प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, डिवाइन पोटेंसी कहा गया है। दो कारण, पहला चीज है इसका भगवान जो दैवी है उनके साथ संबंध है, और दूसरा है उन दैवी भगवान के इच्छा के अनुसार ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है। सो इट वर्क्स, ऐसे कार्य करती है। तो इसलिए ये दो कारणों के कारण ये प्रकृति क्या है, दैवी प्रकृति है। तो पहले अभी हमारा प्रश्न क्या है, क्या संबंध है दैवी भगवान से इस भौतिक प्रकृति का, क्या संबंध है बताइए। तो वो उनका शक्ति है पहला चीज, और दूसरा चीज क्या है, पहले हम लोगों ने देखा कि क्यों इसको दैवी कहा गया, क्योंकि दैवी भगवान से इसका संबंध है पहला कारण, और दूसरा कारण क्या है, वो दैवी भगवान का जो इच्छा है इस भौतिक प्रकृति या अपरा प्रकृति के कार्यकलाप के पीछे है, डिवाइन विल बिहाइंड सो मटेरियल एक्टिविटीज ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी, इंफीरियर मटेरियल एनर्जी। सो और पहले में कि उसके दैवी भगवान से संबंध है, उसमें वो क्या संबंध है, उसके लिए दो कारण, दो अर्थ होते हैं। एक है कि ये भगवान की शक्ति है, दूसरा है वो भगवान से आता है, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य में। सो वो अर्थ है उसका, कि दैवी भगवान के साथ इस अपरा प्रकृति का संबंध है करके। तो गुणमयी, और आगे बताया गया ये क्या है, गुणमयी है, ये दैवी है पहला चीज, भगवान के सभी शक्तियाँ दैवी है, और दूसरा चीज क्या है, गुणमयी है, गुणों से युक्त है, इसमें तीन गुण है, सत्व रज तम है। और श्रील प्रभुपाद गुण शब्द का एक अर्थ बताते हैं, तो गुण शब्द का अर्थ है क्वालिटी, गुण आप जानते हैं ना, हिंदी में भी उसको गुण कहते हैं। और दूसरा अर्थ क्या होता है? तो रस्सी। तो जैसे एक रस्सी तीन अन्य छोटे रस्सियों के द्वारा बनाया जाता है, ऐसे ही भौतिक प्रकृति क्या है? तीन गुणों से बनाया जाता है। रस्सी है ये भौतिक प्रकृति, माया प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है? ये भौतिक प्रकृति जीवात्मा को इन तीन गुणों से बांधने के लिए है। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं ना, ये एक ऐसा रहस्य है कि सभी जीव सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन पूरी तरह से बंधे हैं। है ना, बहुत ही खतरनाक है ना। आप जानते हैं कि आप बंधे हैं तो वो अलग बात है ना। लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप बंधे गए हैं, आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं करके, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे जो अच्छा लगता है वो करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा इच्छा करते हैं लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं ना, है कि नहीं? क्यों कर नहीं पाते हैं? क्योंकि ये गुणों के प्रभाव। और अर्जुन प्रश्न उसके तद विरुद्ध उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, हम इच्छा नहीं करते लेकिन हमें बाध्य किया जाता है करने के लिए, है ना। बहुत सारे इच्छा करते हैं लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं, और इच्छा नहीं करते हैं लेकिन हम बाध्य हो जाते हैं करने के लिए। तो ये गुणों का प्रभाव है। सभी लोग इस जगत में ऐसे बंध गए हैं ये गुणों से। तो प्रभुपाद जी और तात्पर्य में कहते हैं, कौन हमें छुड़ा सकते हैं? जो सभी जीव इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं वो कैसे छुड़ा सकते हैं हम लोगों को? तो सभी लोग आपको ऐसे है, ये जो यहाँ पर बड़े बड़े क्या है पिलर है, आपको रस्सी से बंधा गया, तो क्या आप दूसरे को सहायता कर सकते हैं छुड़ाने के लिए? नहीं कर सकते। तो कौन इसको छुड़ा सकते हैं? जो गुणों के प्रभाव में है। ये एक आध्यात्मिक गुरु या भगवान कृष्ण, आध्यात्मिक गुरु का एक लक्षण है, वो गुणों के परे होना चाहिए, तो तभी हम लोगों को गुणों से मुक्त कर सकते हैं। भगवान के प्रतिनिधि, और भगवान तो परे होते हैं, हम लोगों ने पिछले श्लोक में ही महामेव्य परम अव्ययम उन्होंने बता दिया, वही हमें छुड़ा सकते हैं। एनीवे, कहने का यहाँ पर क्या है, दैवी शक्ति है और वो गुणमयी है। मम माया दुरत्यया, तो क्योंकि ये दैवी शक्ति है और ये गुणमयी है, इसलिए ये दुरत्यया है, दुरत्यया। और तीसरा वो भी मम माया भी हमें, उसको भी हमें समझना चाहिए कि भगवान का माया शक्ति है ये, मेरा माया शक्ति मम बोलते हैं इसके कारण, क्योंकि ये भगवान का शक्ति है, ये हमारा शक्ति नहीं है, इसलिए इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है जीवात्मा को। सिर्फ भगवान इसके परे रहते हैं, इसके अधीन नहीं रहते, भगवान इसके परे रहते हैं। सभी जीव इसके प्रभाव में आ सकते हैं, जब इसके प्रभाव में आ जाते हैं तो उनको बद्ध कहा गया है। क्योंकि हम पहले भी जब हमारा वो चर्चा कर रहे थे ना गीता परिचय के ऊपर, उस समय हम लोगों ने देखा कि पांच विषयों में चार क्या है वो शाश्वत है, कर्म क्या है वो शाश्वत नहीं है। कर्म के फलों को भुगतने के बाद वो कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये चीज एक है वो शाश्वत है। प्रकृति भी शाश्वत है, चार शाश्वत है और प्रकृति भी। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रकृति के जो रूप है वो बदलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रकृति है वो क्या है, वो शाश्वत है। प्रकृति के रूप बदल सकते हैं, या भौतिक जगत का सृष्टि होता है, पालन होता है और नाश होता है, लेकिन प्रकृति हमेशा रहता है। फिर से एक नाश होने के बाद फिर से सृष्टि हो जाता है, इसलिए भौतिक शक्ति क्या है वो शाश्वत है। तो इसके कारण बद्ध जीव का जो जो बद्धता भी है, क्या है वो, शाश्वत है, इसलिए उसको नित्य बद्ध कहा गया है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, वो कभी अशाश्वत अवस्था में है ही नहीं था, मतलब नहीं, दूसरे शब्दों में मुक्त अवस्था में है ही नहीं था वो, ऐसा प्रश्न आ सकता है ना, जीवात्मा मुक्त अवस्था में है ही नहीं था वो, क्या कहेंगे उसके बारे में। कभी कभी लोग इसके आधार पर, नित्य बद्ध जो शब्द के आधार पर ऐसे कहते हैं, कुछ भक्त लोग भी ऐसे सोचते हैं कि जीवात्मा कभी भगवान के साथ नहीं था, हमेशा भौतिक जगत में ही था।
जीवात्मा इसलिए तो भौतिक जगत में आते हुए शाश्वत चीज की तलाश में हो, शाश्वत भौतिक जगत में कुछ देखता ही नहीं, शाश्वत को कहीं देखा है, इसमें तो भगवान के साथ था।
तो हम लोगों ने चर्चा किया जीवात्मा शाश्वत है, इसके कारण उसके जो संबंध है भगवान के साथ वो भी शाश्वत होना चाहिए, इसलिए जीवात्मा का शाश्वत संबंध था। वो तो भूमिका में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, आरंभ में ही पढ़ लेते हैं। जो लोग भगवद्गीता समझना चाहिए उनको अर्जुन के जैसे गुण होना चाहिए, अर्जुन उनके मित्र थे और भक्त थे। फिर प्रभुपाद उसका वर्णन करते हैं कि सभी जीवों का शाश्वत संबंध होता है भगवान के साथ। भगवान जो रसो वैस है, रसमय है, और रसों को आदान प्रदान करते हैं जीवों के साथ, ये जो उनका परिभाषा है वो सर्वोच्च परिभाषा है ना। रसो वैस, हम लोग बहुत सारे परिभाषा देखते हैं ना, गुणों के परे है वो, अधिक ज्ञान के ऊपर अधिकारी है वो, सबका स्रोत है वो, पूर्ण है, बहुत सारे हम लोगों ने परम सत्य का परिभाषा, लेकिन अंत में सर्वोच्च परिभाषा क्या है, परम सत्य रसो वैसा है, उनका भगवान के साथ भगवान रसमय है, अकेला रसामृत मूर्ति ही, उनका शरीर ही रसों से बना है। तो जीवात्मा के साथ वो रस को आस्वादन करते हैं, इसलिए जीवात्मा का सृष्टि होता है, दूसरे शब्दों में जीवात्मा का अस्तित्व है। तो ये शाश्वत संबंध और रस नहीं है तो क्या उसका अस्तित्व में आने का क्या मतलब होता है। इसलिए नित्य बद्ध का अर्थ ये नहीं कि हमें हमेशा भौतिक जगत में ही रहे, लेकिन लंबे समय से, शाश्वत काल से, हम लोग बहुत लंबे समय से भौतिक जगत में हैं, इसलिए उसको नित्य बद्ध कहा गया, तो वो अर्थ है उसका। नहीं तो कोई उसका, उसके अस्तित्व का कोई उसका मतलब ही नहीं होता है ना। कोई कह सकते हैं भगवान भौतिक सृष्टि का लीला करना चाहते हैं, इसलिए कुछ जीव भौतिक जगत में ही होना ही चाहिए, ऐसे कोई तर्क लगा सकते हैं। लेकिन भगवान सृष्टि इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वो उसको आनंद लेना चाहते हैं, वो ठीक है, वो आनंद लेते हैं उसमें, लेकिन सृष्टि करने का उद्देश्य क्या है, जीवात्मा को मुक्त बनाना है बद्ध अवस्था से, क्योंकि लंबे समय से वो भौतिक जगत में है। ठीक है, ऐसे अलग अलग तर्क वितर्क हो सकते हैं। एनीवे द पॉइंट क्या है, हम लोग चर्चा कर रहे थे मम माया है, वो माया है भगवान का, माश या शब्द का क्या अर्थ होता है, माया का मा मतलब नहीं, या मतलब वो नहीं है, जो नहीं है उसको माया कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, माया का अस्तित्व नहीं है, क्या बोलते हैं, माया का अस्तित्व नहीं है, माया का अर्थ होता है जो नहीं है, इसका अर्थ क्या है, माया का अस्तित्व नहीं है, वो सत्य नहीं है, फिर माया मतलब जो नहीं है ना, क्या अर्थ होता है, थोड़े समय के लिए है, बहुत अच्छा बात है। तो वो हमें समझना चाहिए कि वो थोड़े समय के लिए रहता है, या उसका इट इज अ रियलिटी, उसका अस्तित्व रहता है, लेकिन वो अस्थायी अस्तित्व है, इसलिए उसको असत कहा गया है, या उसको माया कहा गया है। तो इसका कहने का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग रात को एक रस्सी को देखते हैं अंधेरे में, और हम लोग सोचते हैं कि सांप है करके। तो ये जो सांप, हमारा जो धारणा है कि ये सांप है करके, वो माया है। रस्सी तो है, और वो अनुभव जो है वो भी क्या है, वो भी सत्य है, उसका भी अस्तित्व होता है। लेकिन वो अस्थाई है, और एक एक तरह का क्या बोलते हैं आप, गलत धारणा है वो, लेकिन धारणा तो है वो, है ना। इसके कारण उसको माया कहते हैं, उसको इलूजरी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वां श्लोक में इस माया का परिभाषा भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं। वो चार जो श्लोक है, 33वां श्लोक से लेकर 36वां श्लोक में तक, उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। चतुश्लोकी भागवत के चार सार श्लोक है ये। तो इसमें एक श्लोक में माया का परिभाषा देते हैं भगवान। रतेतम न प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथाभासं यथातमः, ऐसे भगवान कहते हैं। मेरे संबंध में है ही नहीं, ऐसे जो धारणा है, द कॉन्सेप्ट दैट देर इज समथिंग अदर देन माई सेल्फ और विच हैज नो कनेक्शन विथ मी, दैट इज कॉल्ड एज माया। एक धारणा है बस, लेकिन ये सत्य है। हमें समझना नहीं चाहिए कि ये असत्य है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है, जैसे मायावादी लोग कहते हैं, उसको माया कहते हैं। तो हम वो तात्पर्य यहाँ पर पढ़ना चाहते थे, लेकिन आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर नहीं होगा वो समय के कमी के कारण। तो वो माया का परिभाषा वहाँ पर दिया गया। तो इसका अर्थ होता है कि तो माया सत्य है, लेकिन क्या है वो, एक हमारा जीवात्मा का एक गलत धारणा है। तो भगवान के लिए, जब भगवान कहते हैं कि मम माया, उनके लिए वो माया नहीं है जैसे हमारे लिए, क्योंकि उनके लिए वो भी एक शक्ति है, बहुत सारे शक्तियों में से वो भी एक शक्ति है, बहुत सारे शक्तियों में से वो भी एक शक्ति है। हमारे लिए क्या है, वो माया की तरह कार्य करती है, हम भगवान को भुला देती है और हमें बौद्धिक जगत में बांध के रख देती है, क्योंकि हम लोग उसको भगवान से अलग मानते हैं, ये धारणा के कारण। उसको ही माया कहते हैं, वही माया का परिभाषा है। तो लग जब हम उसको माया के सम भगवान के संबंध में देखते हैं, तो तुरंत ही वो क्या हो जाता है, तो वो माया नहीं रह जाता है। समझ में आ गया। तो ऐसे ये मम माया है, तो क्योंकि ये दैवी है, गुणमयी है, और भगवान कृष्ण के शक्ति है, इसके कारण ये दुरत्य या इसको पार पर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे भगवान बोले, है ना। दैवी है, गुणमयी है, और भगवान का शक्ति है, हमारा शक्ति है, तो हम उसको नियंत्रण कर सकते थे, लेकिन हम उसको नियंत्रण नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो भगवान का शक्ति है। तो इसलिए धुरत्या कहा गया, बहुत ही कठिन है इसको पार कर पाना, इस माया को पार कर पाना। तो जैसे समुन्दर को वो पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है ना, आप तैर के समुन्दर को पार करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जहाज भी बनाए तो बहुत बार डूब जाते हैं, टाइटैनिक है ना, डूब गया। तो पार कर पाना उतना आसान नहीं है, मुश्किल है। कितना भी आप दक्ष तैराकी हो, तैराकी बोलते हैं ना, स्विमर, तो कितना भी तैराक हो, दक्ष तैराक हो, लेकिन फिर भी आप उसको पार नहीं कर सकते हैं। ये भौतिक संसार है, भौतिक जगत माया का शक्ति है, तो बहुत ही कठिन है उसको खार पारना। तो इसलिए दुरत्यया, दुरंता, ऐसे अलग अलग शब्द उपयोग किया गया शास्त्रों में। तो और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मामेव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जो लोग भगवान के शरण में जाते हैं वो तुरंत ही इसके परे चले जाते हैं। तो क्योंकि भगवान इसके परे है, वो स्वतंत्र है। तीन गुण पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि वो कैसे तीन गुण के परे है, वो स्वतंत्र है। उसके कारण जो लोग उनके शरण में जाते हैं तो वो लोग मुक्त हो सकते हैं। इसलिए श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परास्तत तमेव विद्वान इति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाया। तो इनको जो जानते हैं, भगवान को जो जानते हैं, वही लोग मृत्यु, जन्म मृत्यु को पार करके जा सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है इसके लिए, कोई और कोई आपको नहीं बचा सकते हैं। शिवजी भी, कोई भी शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी नहीं बचा सकते हैं। ये अंतर है। क्यों हमें देवी देवताओं का पूजा करना व्यर्थ है? क्योंकि हमें वो जन्म मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते हैं, या भौतिक माया शक्ति का जो बंधन है उसे हमें वो छुड़ा नहीं सकते हैं। ये इसका कारण है। तो मामेव, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद फिर तात्पर्य में उल्लेख कर रहे कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु रेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। तो शिवजी भी वो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो ये माया शक्ति जिसके बारे में यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो एक और चीज, मायामय शब्द का क्या अर्थ होता है? इस जगत में सभी जीव इस माया शक्ति के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तकनीकी और विज्ञान का प्रगति, आर्थिक विकास, सभी इस माया प्रकृति के साथ संघर्ष है। बस वही परिभाषा है उसका, है ना। माया शक्ति क्या कर देता है? बहुत सारा गर्मी सृष्टि कर देता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको फाइट आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फैन बनाया और एसी बनाया। तो लेकिन क्योंकि ये भगवान का शक्ति है, दुरत्यया है, मामी और दैवी है, गुणमयी है, हम लोग इसके साथ इसको सामना नहीं कर सकेंगे, है ना। तो एसी बनाया ये लोग, लेकिन एसी ये क्या बोलता था, कर देता है और ज़्यादा उष्णता बढ़ा देता है, है ना। यहाँ पर आप रहेंगे शहर में, क्या हो जाएगा, बाजू वाले एसी डाल देगा। हाँ, वो लोग एसी में रहने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन उसके कारण दूसरे लोगों को क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। और वो लोग भी जब बाहर आते हैं तो सब जगह तो एसी नहीं लगा सकते, है ना, तो उनको भी लगेगा हीट। तो ऐसे हम लोग जो आधुनिक विज्ञान भी इसको खड़ा करते थे, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहा, हम वी आर गोइंग टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट मटेरियल नेचर आर द लॉज ऑफ द नेचर। सो साइंस मीन्स इट इज अ स्ट्रगल, एडवांसमेंट ऑफ साइंस मीन्स इट स्ट्रगल अगेंस्ट मटेरियल नेचर। तो इस युद्ध में कौन जीतने वाला है अंत में, बताइए। आज तक आपका क्या अनुभव रहा है, वैज्ञानिक लोग जीत गए या प्रकृति ने जीत लिया? प्रकृति कैसे प्रतिक्रिया कैसे लेके आ रहे, देखो कितने सारे रोग, कितने सारे वातावरण में, कितने सारे प्रदूषण, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यू नो, बहुत सारे ऐसे वातावरण के समस्याएं आते हैं। तो माया क्या है, तुरंत ही उसको रिएक्शन प्रतिक्रिया करके और बदला लेती है। तुम प्रकृति को शोषण करने के लिए, उसको संघर्ष करने के लिए कोशिश कर रहे हो, हम तुरंत ही उसका बदला लेंगे। ऐसे जीवात्माओं को निचोड़ के रख देते हैं, तो वो माया शक्ति है। निचोड़ना मतलब निचोड़ना, ये शब्द बहुत अच्छा है इसके लिए। ऐसे निचोड़ के रखते हैं, कैसे निचोड़ दिया ना, कितने सारे रोग हैं ना आजकल, है ना। तो ये लोग सोचा कि हम लोग तकनीकी के साथ ना प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाएंगे, तो उनको निचोड़ दिया मैंने। तो मूर्ख लोग अभी भी समझता नहीं, इतना होने के बावजूद भी समझता नहीं, एक नंबर के पक्के निकम्मे मूर्ख है। हा? तो इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय में कि भौतिक समस्याओं को हम लोग भौतिक उपाय से, तकनीकी और आर्थिक विकास से हम लोग उसको सुलझा नहीं सकते। अर्जुन भी बताया ना, हमें ऐसे देवताओं के समान राज्य भी प्राप्त हो गया तो भी हम इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते। तो क्या है इसके लिए उपाय, यहाँ पर भगवान मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते, जो मेरे शरण में आते हैं वही ये माया शक्ति के प्रभाव से छूट सकते हैं, नहीं तो नहीं छूटने वाला, ऐसा नहीं होगा। जितना हम लोग प्रभुत्व जमा, माया शक्ति के ऊपर प्रभुत्व जमाने के लिए कोशिश करेंगे, उतना माया शक्ति क्या कर देगा, हम लोगों को निचोड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन वो होते हैं जो माया के ऊपर प्रभुत्व जमाने से बजाय वो भगवान के शरण में जाते हैं। इस भौतिक जगत में जितना कम हो सके उतना सरलता से रहकर, है ना, जैसे वो ईशावासम इदं सर्वं यच्छिकिन्त्या जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बोधिता माग्रदकस्य चेति, जितना आपको दैव के व्यवस्था से जितना आपको दिया गया है उतना ही लीजिए, ऐसे बताएगा। उतना लेके वो लोग क्या करते हैं, तो भगवान के शरण में आके माया के प्रभाव से चले जाते हैं। ठीक है, तो यही उसके लिए हल है। हम लोग ऐसे वैज्ञानिकों का, ऐसे दार्शनिकों का, ऐसे राजनेताओं का, उनका आश्रय ग्रहण करेंगे हमारे समस्याओं को हल करने के लिए, तो और हम जटिलता से माया के प्रभाव में आ जाएंगे। सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण में लेना चाहिए, और कोई उपाय नहीं इसके लिए। तो ये मूर्ख लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा बंध गया है भौतिक संसार में, भौतिक संसार या माया शक्ति के प्रभाव। तो श्लोक क्रमांक, ओके विल स्टॉप हियर, वी विल 11 o'clock वी आर कमिंग बैक, 11 to 1, तो 11 बजे फिर से शुरू करेंगे। अभी कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? तीन ही श्लोक हम लोग कर पाए, तीन या चार, चार श्लोक, तीन श्लोक। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? क्योंकि अगला श्लोक बहुत लंबा है। क्यों नहीं समझा सकते हैं? जैसे सूरज है, वो पूरी तरह से शुद्ध है ना, वो कभी दूषित नहीं होते है ना, तो ऐसे सूरज का उदाहरण हमेशा भगवान के साथ, ठीक है, सूरज का उदाहरण हमें भगवान के साथ जो भी संबंधित चीज है सूरज के उदाहरण देते हैं। पद्म पत्र वगैरह वो सब जीवन के लिए लगते हैं, जीवन मुक्त के लिए हमने क्या उदाहरण दिया, वो जीवन मुक्त के लिए हमने क्या उदाहरण दिया, वो कोकोनट का उदाहरण दिया। लेकिन ये सब उदाहरण सिर्फ जीवों के लिए, भगवान के लिए सूरज, जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, नित्य भगवान क्या है, नित्य लीला करते हैं, तो वो सूरज के संबंध में, या भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह रहते हैं, कैसे सबके सर के ऊपर ना सूरज रहते हैं वैसे। और क्या है सूरज का उदाहरण भगवान के संबंध में कैसे लागू होता है, वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं भगवान, है ना। सूरज जैसे हुआ उदय होता है, और इसका अर्थ नहीं कि सूरज सुबह जन्म लिया और मर गया शाम को, ऐसा नहीं। और कुछ
देवी
लेकिन यहाँ पर इसके पहले श्लोक में भगवान ने क्या बताया, जो लोग ऐसे माया शक्ति के प्रभाव में हैं वो लोग भगवान को नहीं जानते हैं। वह श्लोक में कहा क्या कहा गया, महात्मा नस्तुमा पार्थ दैवीम प्रकृति माशिता भजन तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि में, मुझे जानकर वो क्या करते हैं, अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, वो लोग भगवान को जानते हैं लेकिन जो गुणों के प्रभाव में है वो लोग भगवान को नहीं जान सकते, इसलिए वो विरोधाभास हो गए ना। आप उस दैवी प्रकृति को वो माया शक्ति मानते हैं तो वो कैसे भगवान को जान सकेंगे, है कि नहीं। ये जो भौतिक दैवी शक्ति है या भौतिक शक्ति या ये जो दैवी शक्ति है इसके प्रभाव में जो रहते हैं वो माया भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन वहाँ पर क्या बताया गया, भगवान को जान के वो अनन्य भक्ति होने लगते हैं, इसलिए वो ये माया शक्ति नहीं है, वो अंतरंग शक्ति है। ठीक है, क्लियर, गॉट इट ऑर नॉट, दैट इज क्वालिफाइड देयर इमीडिएटली आफ्टर दैट। ठीक है,
चर्चा कर रहे थे ये एनालॉजी से रिलेटेड, बोल रहे थे कि इसमें प्रश्न था कि गुरु प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे विताका पताका न्याय के बारे में मायावादी बोलते हैं कि जीव जो है वो एक घड़े के अंदर है, सूरज की परछाई की तरह से, पर घड़ा खुलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, एक ही वजह से। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप जीव के लिए ऐसे एनालॉजी नहीं दे सकते।
Actually, you see, you know, I think Gurudas probably must have put that up. This, you know, we are having class, anyway, I'll tell you once.
So, what is it? Now, Jeev, Jeev, jo hai, wo ek adhyatmik cheez hai. Aur agar aap iske liye bhautik udaharan le rahe hain, bhautik se, bhautik example ke through aap adhyatmik cheez samjha nahi sakte, ye to mismatch ho. Lekin ये क्वेश्चन है कि प्रॉपर भी कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल दे, जैसे जीवन जीव उदाहरण, उसको उदाहरण हम कोकोनट से लेते हैं, खोखे से खोखरा जो है कोकोनट के आउटर शेल से अलग हो गया, तो जीवन रूप कैसा होता है, ये तो हम भी जो एनर्जी यूज करते हैं, ये मतलब ये कैसे समझ सकते हैं कि प्रॉपर भी बोलते हैं नहीं आप ऐसा उदाहरण क्यों दे रहे हैं।
तो ये तर्क है, उदाहरण देना क्या है, तर्क है, लेकिन जो तार्किक सिद्धांत जो है वो शास्त्र के सिद्धांत से मिलना जुलना चाहिए। आवर इंटरप्रिटेशन शुड ऑल्सो बी अगेन कन्फर्म विथ शास्त्र के एविडेंसेस, समझ में आ गए। वो लोग वो नहीं दे सकते, मायावादी लोग, वो बहुत सारे तर्क, इसलिए उनको लॉजिशियन, ड्राई लॉजिशियंस कहा गया। तर्क गलत नहीं है, हालांकि वो सीमित है लेकिन गलत नहीं है, उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, या शास्त्र के अनुसार। इसलिए उत्तम भक्त क्या है, वो तर्क वितर्क करने में बहुत दक्ष रहता है, लेकिन वो तर्क वितर्क कैसे होता है, शास्त्र के अनुसार। ऐसे मायावादियों का जो शुष्क तर्क नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि ऐसा मेजर करना भगवान के परिभाषा से अलग हो जाता है, भगवान असीमित है, ऐसे परिभाषा से अलग हो जाता है, इसलिए वो माया है। ठीक है ना, एनीथिंग परस्यूड सेपरेट फ्रॉम कृष्ण इज कॉल्ड एज माया। ओके, एनी ट्रूथ विच इज परस्यूड सेपरेट फ्रॉम कृष्ण इज कॉल्ड एज माया। सो इट इज सेपरेट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कृष्ण, राइट और नॉट। ठीक है,
तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रभुपाद तीनों गुणों के प्रभाव में ही होंगे,
भी मोहित हुए होंगे, तो उन्होंने कैसे भगवान को समझा, कैसे जाना और क्या हमेशा
तात्पर्य नहीं पड़े आध्यात्मिक गुरु तीन गुण के प्रेर रहते करके तात्पर्य नहीं पड़े पड़े ना हम लोगों ने यहाँ पर सब मिलके तो फिर से वो पढ़ी है 7:14। हालांकि वो जो शुद्ध भक्त है इस भौतिक जगत में आने के बाद एक शरीर धारण करते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनके उनका जो भक्ति शक्ति का प्रभाव जो है इतना प्रबल रहता है, गुण उनके ऊपर प्रभाव नहीं करते, ठीक है। क्योंकि महात्मा अनस्तुमा बात आगे भी उसका 9वें अध्याय में 14वें श्लोक में वर्ण 13वें श्लोक में वर्णन 13वां और 14वां श्लोक वो भी पढ़ लीजिए, इस तात्पर्य को पढ़िए और 13वां और 14वां श्लोक भी पढ़िए 9वें अध्याय का, अभी पढ़ना चाहिए क्लास के बाद, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाता है ऐसे महान भक्तों के प्रति अपराध हो जाएगा प्रभुपाद जी के जैसे, है ठीक है, कि उनको एक साधारण जीव मानना है ना वो अपराध है। मीन्स यू अंडरस्टूड आर नॉट
माया इज द मीन्स ऑफ या मेजर व्हाट इज मेजरेबल
मीयते अनया इति माया गैलीलियोज अटरेंस मेजर व्हाट इज मेजरेबल एंड मेक मेजरेबल व्हाट इज नॉट had assured in the empiric ethos typifying the era, but such a rascal he is, right? Make miserable what is not, that means what, that he can make everything miserable, that means he can measure God, so then he becomes God, right or not? They indirectly saying that I am God, right? Such a rascal, right or not? Galileo. So had assured in the empiric ethos typifying that era, but Srila Saraswati regarded such enlightening thinking as mere illusion. He would cite Miyate Anaya Iti Maya. Maya is the means of measurement. And he untiringly explained the import of words like Adokshaja, Aprakrita. No, I didn't get this. Maya. Miyate anaya iti maya. So it's, you didn't understand, no? Right or not? I also didn't understand.
It's
just
measurable.
Maybe we did not understand this drugdrashya vichara. Yeah, anyway, we'll think about it later. Now, anyway, brain is not.